نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. تو صبر کیا چیز ہے؟ کیسے صبر کیا جانا چاہیے؟ صبر برداشت کرنا، ہائے وائے وابیلے نہ کرنا، دہائیاں نہ دینا شروع کرنا. صبر وہ سٹرینتھ ہے جس کے ذریعے آپ مسئلوں کو فیس کرتے ہیں. یہ نہیں کہ فوراً بس گیو اپ کر دیں، بھاگ جائیں اسے، یہ صبر نہیں ہے. بس ذرا سا کام مشکل دیکھا، ہم سے تو نہیں ہوتا، یہ بے صبری ہے. ٹھیک ہے، کئی چیزوں کو ہم ان کے اپوزٹ سے پہچانتے ہیں، کیونکہ جب کہا جائے گا صبر کرو، اب پتہ ہی نہیں صبر کیسے کرنا، تو پھر کیا کریں گے؟ جس منصب کے اوپر، جس عہدے کے اوپر آپ کو فائز کیا جا رہا ہے نا، آپ کو جو یہ پوزیشن دی جا رہی ہے اے امت مسلمہ، اس کے لیے بڑا اپنے آپ کو ایسی پوزیشن میں لانا پڑے گا کہ آپ برداشت کریں چیزوں کو. بڑی چیزیں آئیں گی رستے میں، اس دعوت کے مشن میں بہت ایسی چیزیں آئیں گی جو آپ کے اوپر بڑی مشکل گزریں گی. کبھی کوئی کوئی بات کہہ دے گا، کبھی کچھ سنا دے گا، کبھی کوئی ہنسے گا، کبھی کوئی باتیں بنائے گا، کبھی وہ تیز نظروں سے دیکھے گا، کبھی طنز کے تیر برسائے گا، کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی فزیکلی بھی کوئی غزن پہنچانے کی کوشش کرے. تو اس وقت میں کیا کریں گے؟ ہم سے نہیں یہ کام ہوتا، ہم تو بھاگ رہے ہیں، ہم سے نہیں باتیں سنی جاتی، یہ تو بڑا مشکل ہے. یہ نہیں کرنا صبر. صبر کا مطلب ہوتا ہے جم جانا. آپ جمے رہیں، آپ چلتے رہیں، آندھیاں طوفان آئیں گی، آپ نے پیچھے نہیں ہٹ جانا. اس وقت اپنے آپ کو جما کے رکھنا ہے. استعینوا، فرمایا نا مدد حاصل کرو. مدد مطلب کس چیز کے لیے؟ کس چیز کے لیے تو پتا چل گیا، کس کی مدد حاصل کرو؟ اللہ کی. اللہ کی مدد یعنی کیسے ملے گی؟ صبر سے اور نماز سے. یعنی تم اگر چاہتے ہو نا کہ میں کوالیفائی کروں، اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں، کوئی کوالیفیکیشن چاہیے، تب اللہ کی مدد آتی. وہ کوالیفیکیشن کیا ہے؟ وہ ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ صبر اور سلام. جو لوگ کم ہمت ہوں گے، بھاگ جائیں گے، ہم اس راستے پہ نہیں چل سکتے، ان کے ساتھ ہی پھر مدد آئے گی. پھر وہ کیا مدد آئے گی؟ وہ تو بھاگ ہی گئے. تو یہ راستہ کوئی پھولوں کی سیج تو ہے نہیں، قدم قدم پہ قربانی بھی دینی پڑے گی، کچھ مال بھی لگانا پڑے گا، جانیں بھی کھپانی پڑیں گی، ٹائم بھی دینا پڑے گا، اپنی صلاحیتیں بھی لگانی پڑیں گی. یہ بھی کون کر سکتا ہے؟ اس میں صبر ہونا. اور جب صبر نہیں ہے تو ہم سے تو نہیں ہوتا، ہم تو نہیں اپنا ٹائم دے سکتے، ہم تو نہیں اپنا مال لگا سکتے، وہ کیا کریں گے؟ تو یہ بھی صبر ہے، صرف جم جانے نہیں، یہ بھی صبر ہے کہ قربانی دینے کا حوصلہ بھی اس کا ہوتا ہے جس میں صبر ہو. جو لوگ صبر والے ہوں، ڈھیلے نہیں، کم عزم نہیں، ان کے ساتھ اللہ کی تائید آئے گی. پھر صبر یہ بھی ہے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، یہ بھی صبر ہے. تو اس راستے کے اندر صبر کرنا ہوگا. اور لیکن پہلے ہمیں کیا بتایا گیا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ پہلے آیا نا پچھلے پارے میں بھی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت مشکل کام ہے لیکن خشوع والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، عاجزی کرنے والوں کے لیے یہ آسان ہے. ٹھیک ہے، تو جب بنی اسرائیل کو بھی منصب دیا گیا تھا نا، تو ان کو بھی یہی انسٹرکشن دی گئی تھی. آپ پڑھ لیں پچھلے پارے میں جہاں پہ بنی اسرائیل کی باتیں شروع ہوئی ہیں، ان کو بھی یہی کہا گیا تھا صبر اور صلاح، اور ہمیں بھی یہی کہا جا رہا. ٹھیک ہے، تو اچھا اب یہ جو صبر ہے نا، یہ تین چیزوں کا نام ہے، تین جگہوں پہ ہوتا ہے، یا تین اقسام کہہ لے. ایک ہے صبر اطاعت پہ، कि अल्लाह ताला की फरमा बरदारी में जम जाना, जब अल्लाह ताला को हुक्म आया ना, इसको करते रहना, चलते रहना उस रास्ते पे, छोड़ के भाग नहीं जाना, ये सबर है। कोई भी नेकी का काम है, क्या वो मुश्किल लग रहा है, अब वो मुश्किल लग रहा है ठीक है, दिल नहीं चाह रहा, करते रहना, कंटिन्यू करना उसको, ये सबर है। मतलब नमाज का दिल नहीं चाहता, नहीं उठा जा रहा सुबह, फिर भी आप उठे, क्लास में बैठने का नहीं दिल चाह रहा, मैं थकी हुई हूँ, मेरे से ये नहीं हो रहा, सबर चाहिए इसके लिए। सबर के साथ बैठे रहे, जमे रहे, ये जो भगौड़े लोग होते हैं ना, ये कुछ नहीं हासिल कर सकते। इधर आए, इधर से 4 दिन सुना, ओ फिर भाग गए, उधर गए, फिर उधर 4 दिन बैठे, फिर भाग गए। इसका मतलब इनके अंदर सबर नहीं है। सबर भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक नेमत है जो किसी को हासिल हो जाए। तो ये सबर किस पे? इताहत पे। बाज लोग इताहत के काम जोश में आके शुरू तो कर लेते हैं, जमते नहीं है, पर वजह क्या होती? सबर नहीं है ना, बस जोश जोश में किया, शौक शौक में शुरू किया, उसके बाद आप उनको कुछ महीनों बाद देखें, फिर सब कुछ उतार फेंका और सब वैसे का वैसे ही फिर शुरू हो गए, जो जिन कामों में पहले पड़े हुए थे उन्हीं में वापस चले गए। क्योंकि देखें अल्लाह की इताअत ना, इसके लिए सबर रिक्वायर्ड है, अल्लाह की इताअत ऐसे नहीं होती। और 4 दिन काम करना ये तो बड़ा आसान होता, पता तो तब चलता है, इंसान मरते दम तक अल्लाह की इताअत पे कायम रहे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबर। आप भी सबर वालों में हो सकते हैं, अगर आप अल्लाह की हुक्मों के ऊपर चलते रहें, आपको मुश्किल लग रहा है, नहीं नहीं मैंने अपने आप को चलाना है इसके ऊपर, मैंने इस पे रखना है खुद को, अंदर अंदर से दिल जो है ना तंग पड़ रहा है, बोर हो रहे हैं, दिल नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, मुश्किल लग रहा है, नहीं मैंने करना है ये है सबर। ठीक है, मैं इसलिए आपको इतनी डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बाद हम सबर सबर पढ़ लेते हैं, पता नहीं हमारे दिमाग में सबर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कुछ और ही चीज समझे होते हैं सबर को, या पता ही नहीं होता सबर क्या है। तो ये 3 ही हरूफ मगर बहुत बड़ा समंदर है इनमें, पूरी जिंदगी पे हावी है ये सबर। दूसरा सबर क्या है? मासियत पे, गुनाहों पे सबर करना। वो कैसा सबर होता है गुनाहों पे सबर करना? यानी आपका दिल चाहता है कोई काम करने को, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे मना किया हुआ, तो अब आप अपने आप को जो रोकते हैं ना, ये सबर है। आप अपने आप को कहते नहीं मैंने ये नहीं करना, इसमें नहीं जाना, आपको हराम का मौका मिलता है, हराम कमाई के अंदर बहुत पैसा है, आपने अपने आप को रोक लिया, नहीं मैं हम नहीं कर सकते, ये सबर। आपको पता चलता है कि झूठ बोल के यहाँ पे आप बहुत पैसे बना सकते हैं, यहाँ पे फ्रॉड करके बड़े आराम से निकल सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं करते? और ये वाला जो काम है ना, ये तो इस सारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, बल्कि लोग तो उसको ज्यादा मॉडर्न और अच्छा समझते हैं और अप टू डेट समझते हैं, जो ये वाला काम है, लेकिन अल्लाह ताला ने उससे मना किया, आप उससे बाज रहते हैं। मसलन नंगे फिरना, आप नंगे पूरा बरहना नहीं, मगर आप समझ सकते हैं कि किस तरह, मिसाल के तौर पे, और कोई बेहयाई के काम है करना, वो एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, कोई नहीं कुछ कहता, कोई आपको ऑड नहीं समझेगा, कोई आपको मना भी नहीं करेगा, कोई आपको बुरा नहीं जानेगा, लेकिन आप क्यों नहीं करते? फिर अल्लाह ने मना किया, और फिर इस पे जमे रहना, इसी हमेशा अपने आप को बचाते रहना, ये है सबर। ठीक है, मरते दम तक उन कामों से दूर रहना, ये सबर है। ठीक है, ये 2 हो गई बातें। नंबर 3 बात क्या? रंज और गम और मुसीबत और परेशानी के वक्त के अंदर अपने आप को संभाल के रखना, यानी अपने जज्बात को काबू में रखना, अपने रिएक्शंस को काबू में रखना, ये है सबर। समझ आई बात? यानी अब फौरन रिएक्शनरी ना हो जाना, फौरन एकदम से उसके ऊपर वावेला ना खड़ा कर देना, इसके ऊपर जरूरी नहीं होती कि हर चीज के ऊपर हम फौरन बताएं कि ये चीज ऐसे और ऐसे, तो नफ्स को जो रोकना है ना, जिसको हम कहते हैं बर्दाश्त कर लेना, वो है सब्र। लोगों को अजियत देने से, अपने आप को इंतकाम लेने से रोक लेना। आप इंतकाम ले सकते हैं लेकिन आपने अपने आप को रोक दिया। शिकवा शिकायत करने से खुद को रोकना, अल्लाह से मायूस होने से खुद को रोकना, ये सब सब्र है। ठीक है, अब इस के तनाजुर में हम अपने आपको देख सकते हैं कि सब्र क्या चीज है। जब कोई मुश्किल हमारे ऊपर आती है, कोई मसला आता है, तो फिर हमारा क्या रवैया होता है? क्या हम अल्लाह की रजा में राजी रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, या क्या करते हैं? देखिए एक बात याद रखें, जब भी सब्र की बात आती है ना, पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में आता है, शायद सुन सुन के, कि सब्र का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी को फौत हो जाता है तो फिर जाके उसको कहते हैं सब्र करो, तो ये सब्र है। इससे तो आपने बहुत ही इसको लिमिटेड कर दिया। किसी का मरना जीना ये तो लिमिटेड बात हो गई ना। कोई भी परेशानी, कोई भी गम, उसमें इंसान एक पीटना ना शुरू कर दे, चीखना ना शुरू कर दे, दीवारों में सर ना मारे, हाल दुहाइयां ना शुरू कर दे, कपड़े ना फाड़ने लगे, ये फिर उस टाइम का सबर है। तो आपने तीन चीजों में सबर देख लिया ना। अब सबर वाले जो होते हैं ना, इनके लिए बगैर हिसाब किताब के है जन्नत में। आपको इंशाल्लाह ये हदीस बताती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर करने वालों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। देखें खुशखबरियां ऐसे ही नहीं मिल जाती, उन्हीं कामों पे खुशखबरी है। जितना मुश्किल काम होता है ना, उतनी ही बड़ी खुशखबरी है, जितना मुश्किल काम। अब जाहिर है देखे ना, अब जो बंदा PhD करता है उसका मुताबिक उसकी डिग्री है, जो फर्स्ट ग्रेड से पास हुआ उसको वो तो नहीं मिल जाएगा जो PhD कर। सबर बहुत मुश्किल काम है, इन्ना ला कबीर हो तुम, अल्लाह तआला ने तो खुद फरमाया ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा काम है। हम कहते ना अब बड़ा मुश्किल है, वो मुश्किल कह के वहीं बैठ जाते हैं, यानी हमसे नहीं होता ये, जो मुश्किल है तो मुश्किलें पे ही तो बड़े अजर हैं, और क्या मुफ्त ही मिल जाएगी जन्नत? अल्लाह तआला ने फरमाया ना, तुम क्या ऐसे ही समझते हो कि हम ऐसे ही जन्नत में चले जाएंगे? अल्लाह ताला ने तो अभी देखा ही नहीं कि तुमने तो सबर करने वाले कौन से। अभी तो अल्लाह पहले देखेगा ना सबर करने वाले कौन है, फिर ही जन्नत में जा सकते। और जिन्होंने यहाँ पे सबर ही ना किया, छोटी छोटी बातों पे उन्होंने दुआइयां मचा दी, वो कैसे जाएंगे जन्नत में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया सबर करने वालों का अजर, कि कयामत के दिन एक आदमी ने एक मुनादी निदा देगा, यानी एक पुकारने वाला पुकारेगा, सबर करने वाले कहाँ हैं? उन्हें बगैर हिसाब किताब के जन्नत मिलेगी। कुछ लोग खड़े हो जाएंगे और जन्नत की तरफ चल पड़ेंगे, फरिश्ते उनको देख के पूछेंगे आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहेंगे जन्नत में। वो कहेंगे अभी तो हिसाब किताब ही नहीं शुरू हुआ। कहेंगे हाँ हम हिसाब से भी पहले जा रहे हैं। वो पूछेंगे क्यों, आप कौन लोग हैं? वो जवाब देंगे हम सबर करने वाले, हम अल्लाह की फरमा बरदारी करते रहे, यानी मरते दम तक उसकी नाफरमानी से बचते रहे, मरते दम तक इस पर रहे, सबर किया, इस पे जमे रहे। फरिश्ते कहेंगे फिर तो ठीक है, फिर बेशक आपका बदला यही है, आप इसी लायक है कि जाए जन्नत में और मजे करें। नेमा अजरुल आमिलीन, इतना अच्छा बदला अमल करने वालों का ना। तो सबर ये चीज होती है, इतना एक मुश्किल काम है, मानना मुश्किल काम है, लेकिन फिर उसके बाद इसका अजर भी तो देखें। जब लोग परेशानी के अंदर बैठे होंगे, हिसाब किताब देने में मशगूल होंगे, ये बगैर हिसाब किताब के चले जाने, तो तुम सबर करोगे ना तो अल्लाह की हेल्प आएगी तुम्हारे लिए। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका।